हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मुझे न कहने का हक तुम खो चुकी हो। अगर तुमने चुपचाप मेरी बात नहीं मानी और ज्यादा नखरे दिखाए, तो याद रखना कि तुम्हारा परिवार अब भी मेरे कब्जे में है, और अगर तुमने मुझे नाराज किया या गुस्सा दिलाया तो मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। आज हमारी सुहाग रात है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे काम में रुकावट डाले। इसलिए अगर अपने परिवार को सही सलामत देखना चाहती हो तो चुपचाप मुझे करने दो, वरना मुझे नाखुश करने का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, वाइफी। अर्णव ने एक बार फिर उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। धृति दर्द से तिलमिलाकर रह गई थी, क्योंकि अब वो चाह कर भी अर्णव को रोक नहीं सकती थी। उसके चेहरे पर छाई बेबसी के भावों को देखकर अर्णव के लबों पर विजयी मुस्कान तैर गई। वो जानता था कि ऐसी धृति चाहे कितना ही इनकार करे, उसका विरोध करे, पर परिवार की बात आते ही वो कमज़ोर पड़ जाएगी। और हुआ भी वही। फैमिली का जिक्र उठते ही धृति एकदम शांत हो गई। अर्णव ने अब उसको अपनी बाहों की कैद से आज़ाद कर दिया, पर धृति बुत बनी वहीं खड़ी रही। अर्णव ने तिरछी मुस्कान के साथ एक नज़र उसको देखा, फिर एक स्टेप और उसके करीब चला आया। दोनों के बीच बस इंच भर की दूरी थी, जिसे खत्म करते हुए अर्णव उसके एकदम करीब आकर खड़ा हो गया था। उसने धृति के माथे से माथे की पट्टी निकालकर वहीं छोड़ दिया। वो हल्की सी आवाज के साथ फर्श पर जा गिरी। उसने उसकी नाक से उस बड़ी सी नथ को निकालकर उसको भी वहीं छोड़ दिया। धीरे धीरे वो उसके जिस्म से उन गहनों को अलग करता गया। कुछ देर पहले तक जो गहने दुल्हन बनी धृति के बदन पर शोभित थे, उसके खूबसूरती को बढ़ा रहे थे, वे अब बेतरतीब से फर्श पर यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। अर्णव के चेहरे पर एक बार फिर कोई भाव नहीं थे। वहीं धृति बुत बनी उसके सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी की गुड़िया हो, जिसमें प्राण थे ही नहीं। गहने उतारते हुए जाने कितनी ही बार अर्णव की उंगलियां धृति के बदन को छू चुकी थीं, पर न ही अर्णव के चेहरे पर कोई भाव उभरे, न ही धृति ने कुछ रिएक्ट किया। वो वहां ऐसे खड़ी थी जैसे वहां हो ही ना। अर्णव ने एक नज़र उसके भावहीन चेहरे को देखा। कहीं ना कहीं धृति की ये खामोशी उसके गुस्से को बढ़ा रही थी, जबकि वो खुद यही चाहता था। उसने नफ़रत भरी निगाहों से उसको देखने के बाद उसके सर से लेकर कमर पर सेट किए उस दुपट्टे को उसके बदन से दूर हटाकर वहीं छोड़ दिया। अब धृति उसके सामने सिर्फ लहंगे और चोली में खड़ी थी, जिससे उसकी पतली मखमल सी मुलायम गोरी कमर अब साफ नज़र आ रही थी। अर्णव की निगाहें उसके भावहीन चेहरे पर टिकी थीं और धृति की सुनी निगाहें जमीन पर गड़ी हुई थीं। अर्णव ने अपनी एक बांह को उसकी कमर पर फंसाकर एकदम से उसको अपने करीब खींच लिया। धृति किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके सीने से आ टकराई। उसका सर अब भी झुका हुआ था। उसने एक बार सर उठाकर उसको देखा तक नहीं। उसकी यही बातें अर्णव के गुस्से को हवा देने का काम कर रही थीं। उसने अपने दूसरे हाथ को पीछे से उसके सर और बालों पर पकड़ जमाते हुए उसके सर को ऊपर कर दिया, पर धृति की निगाहें अब भी झुकी हुई थीं। उसका यूं निगाहें झुकाए खामोश खड़ा रहना अर्णव को नागवार गुजरा, और उसने गुस्से में उसके सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल अधरों पर अपने शुष्क लबों को टिका दिया और उसके लबों को चूमने लगा। ये किस जितनी गहरी होती जा रही थी, अर्णव उतना ही ज्यादा आक्रामक होता जा रहा था, और उसका आक्रामकपन उस किस में भी साफ झलक रहा था। वो उसके लबों को चूमते हुए उन्हें काटने लगा था, और दर्द से धृति ने अपने लहंगे को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया था। एक लंबी गहरी भावुक किस के बाद अर्णव ने उसके लबों को आज़ाद किया और भावहीन सा उसके चेहरे को देखने लगा, जबकि धृति अब भी सर झुकाए खड़ी गहरी सांसें ले रही थी, क्योंकि इस किस के कारण उसकी सांस नहीं आ रही थी। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। अभी वो अपने चढ़ती उतरती सांसों को ठीक से नियंत्रित भी नहीं कर सकी थी कि अर्णव ने झुककर उसको अपनी बाहों में उठा लिया। अर्णव के हाथ उसकी खुली कमर और पीठ को छू रहे थे, और उसके स्पर्श से धृति का तन बदन सिहर उठा था, पर वो न उसको रोक सकती थी न कुछ कह सकती थी। इसलिए वो एकदम खामोश रही। न उसने निगाहें उठाई और न ही अर्णव को पकड़ा। एक बेजान लाश की तरह वो उसकी बाहों में समाई हुई थी। अर्णव ने जाकर उसको बिस्तर पर बड़े ही आराम से लिटा दिया, फिर उसकी झुकी निगाहों को देखते हुए एक बार फिर उसके चेहरे के करीब झुकने लगा। अगले ही पल धृति के कोमल अधर उसके लबों की कैद में थे और अर्णव बड़ी ही बेरहमी से उसके लबों को काट रहा था। उसकी निगाहें अब भी धृति की झुकी पलकों पर टिकी हुई थीं। धृति ने अब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया तो अर्णव अब उसके गर्दन और कंधों को चूमते हुए उन पर अपने दांतों के निशान छोड़ने लगा। उसकी हथेली धृति की खुली कमर को सहला रही थी। धृति के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। आखिर कब तक वो खामोशी से सब सहती? इतनी मजबूत नहीं थी वो कि अपनी तकलीफ को छुपा पाती। आखिर में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपनी आंखों को कसकर मींच लिया। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अर्णव का विरोध करते हुए उसने उसके कंधों को कसके थाम लिया, जिससे उसके नाखून अर्णव के कंधों पर चुभने लगे। इसके साथ ही उसके कानों में घुटी हुई सिसकी की आवाज पड़ी और वो जहां था वहीं रुक गया। उसने सर उठाकर देखा तो धृति की आंखों से निकलते अश्रु पिल्लों को भिगो रहे थे। उसने अब भी अपनी आंखें मींची हुई थीं और आंखों के कोनों से अश्रु बह रहे थे। चेहरा एकदम लाल हो चुका था। लबों से उसने अपने बातों को दबाया हुआ था। शायद अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी वो। चेहरा दर्द से सना था। अर्णव उसको यही दर्द तो देना चाहता था, फिर भी जब उसकी चाहत पूरी हो रही थी तो वो उसको इस हालत में देख ही नहीं पाया और तुरंत ही अपने कदम पीछे हटा लिए। तभी उसकी नज़र उसकी खुली कमर पर पड़ी जहां उसके नाखूनों के निशान बने हुए थे। उसने तुरंत ही अपनी निगाहें फेर ली और बिस्तर के कोने में रखे ब्लैंकेट को उठाकर उसको ऊपर फेंकते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। उसने दरवाजे को इतनी तेज बंद किया कि अंदर बिस्तर पर लेटी धृति डर से कांप उठी। आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई और उस ब्लैंकेट को खुद पर लपेटे हुए वो बिस्तर के एकदम कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। उसने अपना सर अपने घुटनों के बीच छुपा लिया और फफक कर रो पड़ी। दूसरी तरफ अर्णव उसी फ्लोर पर बने जिम में पहुंच गया। अजीब से जज्बात से घिरा था उसका मन। नफरत करता था धृति से, उसको दर्द देना चाहता था, पर उसका दर्द देखकर अब खुद बेचैन हो रहा था। आंखों के सामने बार बार उसकी आंसुओं से भरी लाल आंखें नजर आ रही थीं और कानों में उसकी घुटी सिसकियों की आवाज शीशों की कीर्चों से चुभ रही थी। उसने अपना गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। मन उलझा हुआ था। आज खुद को ही नहीं समझ पा रहा था वो। अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसने पंचिंग बैग पर निकालना शुरू कर दिया। एक घंटा बीत गया, तब भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। अब ये गुस्सा क्यों था ये वो खुद नहीं जानता था। वो धृति को दर्द देना चाहता था और वही देकर आया था तो उसे खुश होना चाहिए था, पर उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। मौका था आज उसके पास और उसने सोचा भी था कि आज धृति को ऐसा जख्म देगा जो वक्त के बीतने के साथ नासूर बनकर उसको असहनीय पीड़ा का एहसास करवाएगा। पर जब उसका दर्द से सना चेहरा निगाहों के सामने आया तो वो सब भूल गया। नफरत करता था उससे, फिर भी उसकी तकलीफ देखकर उसने अपने कदमों को पीछे हटा लिया। वो अपने ही ख्यालों में बुरी तरह उलझा हुआ था और वही गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन वो खुद पर निकाल रहा था इस वक्त। उसके हाथ अब भी नहीं रुके थे। अचानक ही उसके दिमाग में धृति का ख्याल आया और उसके हाथ रुक गए। जिस हालत में वो उसे उस कमरे में अकेले छोड़कर आया था, ना चाहते हुए भी उसको उसकी फिक्र होने लगी और कदम अनायास ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उसने कमरे में कदम रखा तो अब वहां घना अंधेरा छाया हुआ था। कैंडल्स बुझ चुके थे पर उनकी खुशबू अब भी वहां की हवा में घुली हुई थी। कमरे में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और उस सन्नाटे को चीरते हुए किसी की सिसकियों की आवाज अर्णव के कानों तक पहुंच रही थी। उसने तुरंत ही कमरे की लाइट्स जलाई और बिस्तर की तरफ निगाहें घुमाई तो बिस्तर के कोने से टिककर बैठी धृति पर उसकी निगाहें जम सी गईं। धृति अपने पैरों को समेटे और घुटनों के बीच अपना सर छुपाए खुद में सिमटी हुई सी बैठी थी। ब्लैंकेट को अच्छे से खुद पर लपेटा हुआ था। उसके शरीर में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रही थी, पर सिसकियों की आवाज उस कमरे में गूंज रही थी। ये बात उसको थोड़ी अजीब लगी। वो धीमे कदमों से उसके तरफ बढ़ गया। कदमों की आहट पर भी धृति के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। ये देखकर अर्णव की भौहें एक साथ आ गईं। वो धृति के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको हिलाया तो धृति दूसरी तरफ लुढ़क गई। ये देखकर अर्णव घबराकर पीछे हट गया। अब उसकी नज़र धृति के आंसुओं से भीगे लाल चेहरे पर पड़ी। कितना मासूम चेहरा था उसका। आंसुओं से मेकअप धुल चुका था और अब उसके अपर लिप का तिल साफ नज़र आ रहा था। मासूमियत से लबरेज सादगी भरा चेहरा जिस पर दर्द पसरा हुआ था। अर्नव की निगाहें कुछ पल को उसके चेहरे पर जम सी गईं। इतने घंटों में पहली बार इतने ध्यान से उसको देखा था। बला की खूबसूरत थी वो और उतनी ही ज्यादा मासूम लग रही थी, पर अर्नव को उसकी ये मासूमियत भी छलावा लग रही थी। उसने कुछ पल बाद ही नफ़रत से उस पर से अपनी निगाहें फेरते हुए खुद से ही कहा, इसी मासूमियत को दिखाकर तुम लड़कों को अपने जाल में फंसाती होगी, पर तुम्हारी इस झूठी मासूमियत का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे उस शातिर चेहरे से बखूबी वाकिफ हूँ। तुम उन लड़कियों में से हो जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे मायने रखते हैं, जो चंद पैसों के लिए किसी की भी जिंदगी से खेलवाड़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है, जिन्हें अपने किए गुनाहों का एहसास तक नहीं होता, जो अपने फायदे के लिए किसी के सच्चे जज्बातों से खेलने से पहले एक बार सोचती तक नहीं है, जो अपने अमीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं रहती। तुम्हारी ये भोली सूरत के छलावे में मैं कभी नहीं आऊंगा और न ही तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का मुझ पर कोई असर होगा। तुम्हें मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। एक बार फिर उसकी आंखों में धृति के लिए बेइंतहा नफरत झलकने लगी थी। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसने घृणा भरी नजर धृति पर डाली और तेज कदमों से वहां से चला गया। दूसरे कमरे में जाकर उसने शावर लिया, फिर बाथरोब पहनकर ही बिस्तर पर पड़ गया और धृति और इस शादी के बारे में सोचते हुए थकान के कारण जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया।